चैप्टर 2। वहीं दूसरी तरफ वे लड़की धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर लेने लगती है। जब उसे ऐसा लगता है कि किसी की नज़र उस पर नहीं है तो वे तुरंत ही भागने लगती है। पर वे भाग पाती तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठाया है। जिसे महसूस कर वे अपना सर नीचे कर देखती है तो उसे अपनी कमर पर एक हाथ दिखते हैं। जिसे देख वे अपने दोनों हाथों से उस हाथ पर मारते हुए गुस्से से बोली, हे कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? छोड़ो मुझे। वे शख्स जिसने उसे पकड़ा था वे कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही था। रुद्र उस लड़की की बात सुनकर उसे छोड़ देता है। जिसे देख वे लड़की खुश हो जाती हैं और जैसे ही जाने को होती हैं वैसे ही रुद्र उस लड़की की कलाई पकड़ उसे अपनी तरफ घुमा लेता है और उसकी कमर को पकड़ खुद के करीब कर उस लड़की की हल्की ग्रीन आंखों में देखने लगता है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक था। वहीं वे लड़की रुद्र के ऐसा करने से गुस्सा हो जाती है और अपनी कमर से रुद्र का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए गुस्से में बोली, हे छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है। उस लड़की के इतना बोलते ही रुद्र की नज़र उस लड़की के हिलते हुए गुलाबी होठों पर चली जाती है, जो हार्ट के शेप में काफी खूबसूरत दिख रहे थे। वहीं वे लड़की जब देखती है कि उसे इस तरह पकड़ने वाला हैंडसम सा आदमी कोई जवाब नहीं दे रहा तो वे अपने एक हाथ को उठा उस आदमी के गले पर ले जा उसे गले पर तेजी से चुटकी काट लेती है। लेकिन उस लड़की के ऐसा करने के रुद्र पर कोई असर तो नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि उस लड़की के हाथ उसे एक सॉफ्ट कॉटन की तरह लग रहे थे। वहीं वे लड़की रुद्र की हरकतों से अब काफी परेशान हो गई, इसलिए वे अब लगभग चिल्लाते हुए बोली, हे छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को इस तरह परेशान करते हुए? रुद्र जो अब तक उस लड़की की फीलिंग को महसूस कर रहा था, जब वे उस लड़की की तेज आवाज सुनता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसे अपने अलावा किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं थी। वे अपनी आंखें एक झटके में खोलते हुए अपनी नीली आंखों से उस लड़की की ग्रीन आंखों में देखते हुए काफी खतरनाक आवाज में बोला, चुप, बिल्कुल चुप। मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझसे अपनी ऊंची आवाज में बात करे या मुझ पर चिल्लाए। वहीं वे लड़की जो काफी गुस्से में थी रुद्र की खतरनाक आवाज सुनकर बिल्कुल शांत हो जाती है और उसके दिल में रुद्र के लिए डर बैठ जाता है। वहीं रुद्र जब उस लड़की को शांत होता हुआ और खुद से डरता हुआ देखता है तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। रुद्र उस लड़की को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र की खतरनाक आवाज सुनकर वे लड़की इतना डर जाती है कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। वहीं रुद्र जब उस लड़की को कुछ भी बोलता हुआ नहीं देखता है तो उसकी आंखें गहरी और भयानक हो जाती है क्योंकि उसे अपनी कही गई बातों को रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रुद्र अपनी भयानक आंखों से उस लड़की को देखते हुए बोला, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अगर इस बार मुझे तुम्हारा जवाब नहीं मिला तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा जिसका अंदाजा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होगा। उस लड़की को अब तक जो चेहरा हैंडसम लग रहा था अब उसे वही चेहरा काफी भयानक लगने लगता है। रुद्र के भयानक चेहरे और उसकी बातें सुनकर वे लड़की काफी डर जाती है। उसके गले से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रहा था, फिर भी वे काफी मुश्किल से हकलाते हुए एक शब्द में बोली, रूही। रुद्र के कानों में जैसे ही ये नाम पड़ता है उसके मुंह से खुद बखुद निकल जाता है, रूही, रुद्र की रूही। इतना बोल वे मुस्कुराने लगता है। वहीं रूही जो रुद्र से काफी डर चुकी थी लेकिन फिर भी वे हिम्मत करते हुए अपनी प्यारी और मासूम आवाज में बोली, अब नाम जान लिया है ना, अब प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे घुटन हो रही है। वहीं रुद्र जो अभी रूही का नाम जान मुस्कुरा रहा था रूही की बात सुनकर उसका पारा फिर से हाई हो जाता है। वहीं अमन और बॉडीगार्ड्स जो कब से अपने बॉस को देख रहे थे अपने बॉस को इस तरह किसी लड़की के इतने करीब जाता हुआ और उस लड़की के साथ इस तरह बिहेव करता देख उन सभी की आंखें हैरानी की वजह से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बॉस इस तरह किसी लड़की के करीब जा सकता है क्योंकि वे अपने बॉस के साथ इतने सालों से थे। अगर कोई भी लड़की उनके बॉस के करीब आने की कोशिश करती थी तो उनके बॉस उस लड़की की पूरी लाइफ एक झटके में बर्बाद कर देते थे। इसलिए जिन लड़कियों को उनके बॉस के बारे में खबर है वे लड़कियां उनके बॉस के करीब आने की गलती बिल्कुल भी नहीं करती थीं। लेकिन अमन इस चीज को देख काफी हैरान था कि उसके बॉस खुद इस लड़की के करीब गए थे और ऊपर से उस लड़की के साथ जबरदस्ती भी कर रहे हैं और उस लड़की के इतना सब कुछ बोलने के बाद भी उसके बॉस उस लड़की को कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना ही उस बेचारी प्यारी और मासूम सी लड़की को छोड़ने को तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला। सिंघानिया विला वाइट संगमरमर से बनी काफी खूबसूरत और बड़ा विला है जो किसी महल के कम नहीं था। इसकी कीमत अरबों में है। खासकर इस विला की जो डिजाइन है वे काफी ज्यादा यूनिक और लोगों के दिलों को लुभा देने वाला था। इस विला को आज काफी खूबसूरती से सजाया गया था, क्योंकि इतने सालों बाद इस विला में इस घर का बड़ा बेटा वापस आने वाला था। इस विला के अंदर एक खूबसूरत सी औरत जिसका नाम सुमन था, वे नौकरों पर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, मैंने आप लोगों से बोला था ना कि आज कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फिर आप लोगों ने अभी तक पूजा की थाल क्यों नहीं तैयार की? पता नहीं मेरा बेटा किस टाइम यहाँ आ जाए, मैं आज कोई भी गड़बड़ नहीं चाहती। सुमन की बात सुनकर उनमें से एक नौकर आगे आते हुए कहता है, मालकिन आप चिंता मत कीजिए, हम अभी पूजा की थाल तैयार कर देते हैं। नौकर की बात सुनकर सुमन उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं रहने दीजिए, मैं खुद ही कर लूंगी, आप लोग बाकी के काम कीजिए। इतना बोल वे नौकरों को जाने के लिए कहती हैं और खुद पूजा की थाल तैयार करने के लिए जाने लगती हैं। वहीं सोफे पर सुमन की नंद कामना बैठी हुई थी, जो अपने पति के मरने के बाद अपने बेटे के साथ यहीं इसी लीला में रहती थी। वे सुमन जी को ताना मारते हुए बोली, भाभी आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं, जबकि आपको अच्छे से पता है वे आपको ना ही अपनी माँ मानता है और ना ही आपको पसंद करता है। आप जो इतनी मेहनत कर रही हैं उसका कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि वे इन पूजा पाठों को कहाँ ही मानता है। वैसे भी भाभी जब वे आपसे सही से बात ही नहीं करता तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वे आपको अपनी आरती उतारने देगा? सुमन जब कामना की बात सुनती है तो उसे काफी दुख होता है, लेकिन फिर भी वे अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, कोई बात नहीं दीदी, एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वे मुझे समझेगा।
इतना बोल वे मंदिर में पूजा की थाल तैयार करने चली जाती है। वहीं कामना सुमन की बात सुनकर मुंह बना लेती है। वहीं सुमन पूजा की थाल तैयार करने के बाद अपनी बेटी के रूम में जाने लगती हैं। तभी रास्ते में वे किसी से टकरा जाती हैं और जैसे ही वे गिरने वाली होती हैं वैसे ही वे आदमी उन्हें कमर से पकड़ संभाल लेते हैं। वहीं सुमन जिसने गिरने के डर की वजह से अपनी आंखें बंद की थीं, वे खुद को ना गिरता हुआ पाती हैं तो अपनी आंखें खोल देखती हैं तो उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने पति धीरज नजर आते हैं, जिन्हें देख वे चैन की सांस लेती हैं। वहीं धीरज सुमन को इस तरह जब गिरता हुआ पाते हैं तो उन्हें ठीक से खड़ा करते हुए गुस्से में कुछ ऐसा करते हैं जिससे सुमन की चीख निकल जाती है।